मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र पर चर्चा चल रही है। पहले अधिकार की विषय वस्तु पर कल अपन ने चर्चा की थी और उसमें ये कहा था कि उन्होंने मंगलाचरण में उस चीज को नमस्कार किया है जिससे यह आत्मा स्वयं परमात्मा बनता है। साधारण आत्मा संत परमेश्वर पद को कैसे प्राप्त करता है? जिस भगवान आत्मा की जिस वीतराग विज्ञान के आश्रय से वो पंच परमेष्टी पद को प्राप्त करता है, तो सबसे पहले उन्होंने उन्हें नमस्कार किया था। ये बात ऐसे ही अचानक नहीं हो गई थी, यह बात उनके दिल में इतनी गहराई से जमी हुई है कि दूसरे अध्याय का जब मंगलाचरण करते हैं तो प्रकारांतर से वे उसी बात को फिर याद करते हैं। देखो, मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जय बंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मिथ्या भावों के अभाव से, मैंने मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अभाव से जो निज भाव प्रकट होता है वही वितराग विज्ञान। वितराग विज्ञान कहो, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, ये उस निज भाव की बात है जो प्रकट होता है। जो निज भाव सदा विद्यमान है उसकी बात नहीं है। सो जयवंत रहो सदा, वह निज भाव मन वितराग विज्ञान सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र सदा ही जयवंत रहो, क्योंकि वही मोक्ष का वास्तविक उपाय है। दूसरी बात एक कही थी अपन ने कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मोक्ष के मार्ग का निर्वाण करने वाला नहीं है, बल्कि उस पर प्रकाश डालने वाला है। मार्ग का निर्माण तो जैन दर्शन में तीर्थंकर भी नहीं करते हैं, मार्ग तो निर्मित ही है, वो भी उसे बताते ही हैं। और यहां इसलिए वो इस पहली पंक्ति में लिखते हैं कि अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, कि हम मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डालते हैं, यह साफ लिखा उन्होंने। अपने ग्रंथ के नाम की सार्थकता भी उनके हृदय में बहुत गहराई से जमी हुई है। आगे वे इसी में लिखते हैं इस अधिकार में ही कि वो ही उपदेश सच्चा है जो मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डाले, वो ही सार्थक है। दुनियादारी की बातें सिखाने वाला, जगत में कैसे रहना, ये सारी बातें वो जिनवाणी का उपदेश नहीं हो सकता है। तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में बैठकर सास बहू को किस प्रकार प्रेम से रहना चाहिए, भाई भाइयों को कैसे नहीं लड़ना चाहिए, इस बात का उपदेश देने नहीं बैठते हैं। वैसे ये बातें भी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन सवाल मोक्ष के मार्ग का है। वो तो ये कहते हैं कि सास को भी दीक्षा ले लेना चाहिए और बहू को भी दीक्षा ले लेना चाहिए। वे राग करना नहीं सिखाते हैं, अरे तो राग से हटकर वीतरागता की तरफ ले जाने का मार्ग बताते हैं। इसलिए वो लिखते हैं कि वही सच्चा उपदेश है जो मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डाले, और वास्तव में उसके अलावा कोई वो उपदेश सच्चा उपदेश ही नहीं है। कम से कम वो देश न लब्धि तो नहीं हो सकता है। वो आठवें अध्याय में भी इस बात पर उन्होंने चर्चा की है और दूसरे अध्याय में भी इस बात का संकेत उन्होंने किया है। पंडित टोडरमल जी मनोविज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने इस मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डालने के लिए परंपरागत रास्ते को नहीं अपनाया। महाशास्त्र तत्वा सूत्र में तो पहला ही सूत्र यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उन्होंने तो ये बात पहले सूत्र से ही शुरू की। संसार के दुखों का वर्णन से जाके आगे पीछे चौथे अध्याय में वहां किया। लेकिन पंडित टोडरमल जी इसकी चर्चा नौवें अध्याय में जाकर करते हैं। और वो अपनी शैली के की सार्थकता के लिए तर्क देते हैं, उदाहरण देकर के जगत के सामने रखते हैं कि मैं जो इस शैली को अपना रहा हूं उसके पीछे क्या कारण है। वो एक वैद्य के उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करते हैं। उस जमाने में डॉक्टर तो थे ही नहीं, वैद्य लोग थे। उनका ये उदाहरण लगातार शुरू के 5-6 अध्यायों में चलता है। वो कहते हैं कि जब कोई मरीज किसी वैद्य के पास आता है तो वैद्य उसे रोग का स्वरूप समझाते हैं, तू बीमार है, तेरे को क्या तकलीफ है, और उसके बाद उसे रोग से मुक्ति का उपाय बताते हैं। इसलिए इन संसारी जीवों को इनकी जो वर्तमान में अवस्था है वो दुख रूप है, इसका ज्ञान हम पहले कराएंगे। हो सकता है कि टोडरमल जी साहब कहते हैं पहले के जमाने में ऐसा होता था कि वैद्य मरीज से नहीं पूछता था कि तेरे को तकलीफ क्या है, बल्कि उसकी नाड़ी देखता था और तरह से जांच करता था और नाड़ी देखते देखते बताता जाता था पेट में दर्द होता है, सुबह ऐसा होता है। उससे मरीज के हृदय में एक श्रद्धा का भाव जगता था कि मेरे बिना बताए ही वैद्य जी ने इस नाड़ी के माध्यम से मेरी बीमारी पहचान ली है। तो निश्चित रूप से जो उपाय बताएंगे वो भी गारंटी से सच्चा होगा। वो पहले बीमारी का स्वरूप बताता है कि तुम्हें क्या क्या तकलीफ है बिना बताए मरीज के, और बाद में वो ये कहता है कि तुम्हें बीमारी कैसे हुई तुम्हें मालूम है, और वो भी वो सब बताता है कि तुमने ऐसी बद परहेजी की होगी, ऐसा खाया पिया होगा, ऐसा किया होगा। तो बीमारी के कारणों को बताता है जिससे उसे और पक्का भरोसा हो जाता है कि वैद्यराज जी मेरी बीमारी को भी पहचानते हैं और वो कैसे हुई इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं। छिपाने से काम नहीं चलेगा। वे कहेंगे तुमने गुड़ खाया होगा, नहीं साहब मैंने गुड़ तो खाया ही नहीं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यदि गुड़ खाऊंगा तो वैद्य जी को बिना बताए नाड़ी देख करके ही पता चल जाएगा। जब उसकी श्रद्धा वैद्य जी पे पक्की हो जाती है तब फिर वो कहता है कि देखो तुमने यदि इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो इसका भयंकर परिणाम क्या होगा। फिर उसकी भयंकरता को बताकर जब वो पूरी तरह इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे इलाज और परहेज दोनों ही बताता है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में मैं भी इसी प्रकार अपने मरीजों को जो संसार रोग से पीड़ित है मैं इसी शैली में उन्हें मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डालूंगा। कल मंगलाचरण में अपन ने पढ़ा था कि वे इसे अपने को ग्रंथ राज कहते हैं। और आज अपन ने अभी देखा कि वे इसे लिखते हैं कि इस शास्त्र में मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। मैंने उसकी उनकी दृष्टि में वे शास्त्र लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, यानी जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आज शास्त्र तो आचार्य लिखते हैं, पंडित लोग तो किताबें लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं। ऐसे शास्त्र में और पुस्तकों में जो भेद डालते हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पंडित टोडरमल जी कहते हैं मैं शास्त्र लिखता हूं, मेरे इस ग्रंथ का महत्व किसी शास्त्र से कम मत आंकना, अन्यथा उसका लाभ जो तुम्हें मिलना चाहिए वो लाभ तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इस शास्त्र की महिमा इसलिए नहीं है कि पंडित टोडरमल ने लिखा है, वो कहते हैं ये शास्त्र इसलिए महाग्रंथ है, इसलिए महान है क्योंकि इसमें मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि इसमें वही बात है जो गणधर देव की उपस्थिति में, स्वयं द्रव की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा ने समोसरण में बैठकर सब लोगों को बताई थी। इसकी महानता उस बात में है, लिखने वाले व्यक्ति के नाम के साथ नहीं है। इसलिए पंडित लिखे सो शास्त्र और मुनिराज लिखे सो शास्त्र, पंडित लिखे सो किताबें, ऐसी बात नहीं है। यदि मुनिराज तोता मैना का किस्सा लिखते हैं तो वो किताब होगी। यदि विद्वान पंडित मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डालते हैं तो वो शास्त्र होगा। शास्त्र है या साधारण पुस्तक है, इसका निर्णय उसमें प्रतिपादित विषय वस्तु के आधार पर होता है, किसने लिखा है इसके आधार पर नहीं होता है। इसलिए वे अपनी इस बात पर उन्हें गौरव है, गर्व है कि मैं महाग्रंथ को लिखने जा रहा हूं, मैं एक शास्त्र लिखने जा रहा हूं। जब मैंने क्रमबद्ध पर्याय की किताब लिखी और सब विद्वानों के पास, मुनिराजों के पास भेजी तो बहुत लोगों की सम्मति आई। तो एक पंडित जी थे, पंडित खेमचंद जी भाई, आप लोग जानते होंगे, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सानिध्य में उन्होंने सारा जीवन लगाया था। उन्होंने ये लिखा है कि आपने जो ये शास्त्र लिखा है ये दुनिया ऐसे युग तक याद करेगी और महान काम किया है। तो मैंने उन्हें लिखा कि आप मेरी किताब को शास्त्र क्यों कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उनका उत्तर मेरे पास आया कि आप बहुत भ्रम में हैं कि मैंने आपकी किसी किताब को शास्त्र लिखा है, मैंने तो उसमें जो जैन दर्शन का अद्भुत और महान सिद्धांत है उसका जिसमें प्रतिपादन हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से प्रतिपादन हुआ है, जगत के लिए बहुत अच्छी चीज है, वो शास्त्र नहीं महाशास्त्र है। इसलिए आप ये मत समझिए कि ये आपकी बात है, ये तो उस क्रमबद्ध पर्याय नामक किताब पुस्तक की बात है, वो शास्त्र है। यदि हम शास्त्रों के अनुसार, यदि हम भगवान वीतरागी की सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार कोई भी चीज लिखते हैं और उसमें आगम से कोई विरोध नहीं है, युक्ति से कोई विरोध नहीं है और वो मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालने वाला है, तो वो निश्चित रूप से शास्त्र है। हमारे अंदर में इस बात का विचार करने का कोई अवब नहीं है कि किसने लिखा है, पंडित ने लिखा है कि आचार्य ने लिखा है। ऐसा आजकल कुछ बातें चलती हैं, इसलिए मैं बात करता हूं। कुछ लोग कहते हैं तो हिंदी में लिखा है, इसलिए संस्कृत भाषा या प्राकृत में लिखा होता तो शास्त्र होता, लेकिन भाषा से कोई शास्त्र नहीं होता है। भाषा तो युग के हिसाब से बदलती रहती है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि मैंने हिंदी भाषा में इस शास्त्र को तो इसलिए लिखा कि मैं अधिकतम लोगों के पास तक अपने इस तत्व ज्ञान की बात को पहुंचाना चाहता हूं। यदि मैं संस्कृत प्राकृत में लिखूंगा तो फिर उसको पढ़ने वाले लिमिटेड ही होंगे, और वो जो होंगे वो स्वयं विद्वान होंगे, और वे स्वयं उन शास्त्रों से जो अभी तक विद्यमान है उन शास्त्रों के आधार से ही अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। उन्हें आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता उन लोगों को है जो संस्कृत प्राकृत नहीं जानते हैं, जो न्याय और व्याकरण के पाठी नहीं है। उन्हें सुगम भाषा में मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ये मेरा उद्देश्य है। ये बात का खुलासा उन्होंने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में किया भी है कि हम इस भाषा में क्यों लिखते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। उदाहरण तो पंडित टोडामल के एक से एक बढ़िया है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा दीपक हो उससे उजाला तो बहुत होता है, लेकिन उसको जलाने के लिए तेल भी बहुत चाहिए, बाती भी बहुत चाहिए, स्थान बड़ा चाहिए, उसके लिए साधन बहुत बड़े चाहिए। तो गरीब घर में छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला यदि उस बड़े दीपक को अपने घर में रख ले तो बैठेगा कहां? इतना तेल कहां से लाएगा? इसलिए अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार छोटे बड़े दीपक जलाए जाते हैं। तो महाशास्त्र तो महादीपक है संस्कृत प्राकृत भाषा के। उनके प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए तो संस्कृत प्राकृत भाषा के पंडित चाहिए, साधन बहुत चाहिए, समय बहुत चाहिए। इसलिए मैं उन सामान्य लोगों के लिए ऐसा लिखते हैं कि मेरे से भी अल्प बुद्धि के धनी बहुत जीव हैं, मैं उनके कल्याण के लिए ये शास्त्र लिखता हूं। इसलिए ये शास्त्र हिंदी में लिखा गया है, ये शास्त्र पंडित ने लिखा है, इसलिए इसकी महिमा कम है। ये बात हमारे दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए। अब इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में सबसे वो पहले कहते हैं कि जैसे वैद्य रोग का निदान करता है, बीमारी के इलाज से भी ज्यादा महत्व निदान का है। यदि सही निदान नहीं हुआ, निदान माने क्या कि क्या बीमारी है, यदि ये बात वैद्य की पकड़ में नहीं आई और इलाज शुरू कर दिया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए इलाज की जल्दी नहीं करनी चाहिए, दवा खाने की जल्दी नहीं करना चाहिए। पहले अच्छी तरह से ये पता लगाना चाहिए कि बीमारी क्या है। होए टीवी और इलाज करें हम कैंसर का, होवे कैंसर और इलाज करें टीवी का, तो समय निकल जाएगा, उससे लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले निदान, तो वो कहते हैं निदान दूसरे अध्याय में बीमारी का निदान। तो इसलिए वो कहते हैं कर्म बंध का निदान, तो अनादि काल से इस जीव के कर्म का बंधन है, और कर्म के बंधन होने के साथ साथ मोह राग द्वेष भी की परिणति भी इस जीव के अनादि से ही है। तो सबसे पहले तो आत्मा को बंधन है, कर्म बंध है, मोह राग द्वेष के भाव है, बेकारी ये अनादि से है, ये बात सिद्ध थी। और फिर बाद में ये बताया कि अनादि से जो कर्म बंध मोह राग द्वेष है उनसे नए कर्म किस प्रकार बंधते हैं, वो कर्म सत्ता में कैसे रहते हैं, और फिर उदय में किस प्रकार आते हैं, और फिर उनके फल में किस प्रकार के सुख दुख इस जीव को भोगना पड़ते हैं, वो सारी बातें विस्तार से इन्होंने बताई। जैसे वो वैद्य कहता है ना कि साहब मैंने तो कोई गलती नहीं की, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो कहता भैया ये तो तुम्हारे जन्म से ही है, तुम्हारे हार्ट का जो बाल्व है ना वो जन्म से ही टेढ़ा है, यानी जन्म से टेढ़ा है उसका तो मैं क्या कर सकता हूं, है ना। ये बीमारी तो तुम्हारे जन्म जात है, पैतृक है जैसे बोलते हैं ना, तो कहते एक बीमारी तो इस आत्मा को अनादि से है। विस्तार से प्रकाश डाला, आत्मा और कर्म का बंधन अनादि से है, नया नहीं हुआ है, और मोह राग द्वेष का परिणाम ये भी अनादि से है। ऐसा भी प्रश्न उठाया कि जब अनादि से मिला है तो आपने जाना कैसे कि एक जुदे जुदे हैं, कर्म जुदा है और आत्मा जुदा है। जब अनादि से ही मित्र है तो जान नहीं सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा बाद में जब ये अलग हुए किसी के तो पता चला कि ये तो जुदे जुदे से जिन्हें हम एक समझ रहे थे। जैसा सोना अनादि से ही खदान में वो विकार से युक्त है, शुद्ध सोना थोड़ी कहीं पर अंदर में है। जो सोना की खदाने हैं उनमें से तो अशुद्ध सोना ही निकलता है, फिर तो उसे शुद्ध करके शुद्ध बनाया जाता है। तो वो अशुद्ध सोने में अशुद्धि जुदी है, विकार जुदा है और सोना जुदा है। ये पता कैसे चला कि जब वो बाद में अलग अलग हुआ तो मालूम पड़ा कि विकार जुदा था और आत्मा जुदा था। इस तरह उन्होंने सबसे पहले अनादिकाल से आत्मा के कर्म का बंधन है और वो उसी की उदय निमित्त से आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम है। ये एक तो बीमारी का स्वरूप ये है। और जब हम देखते हैं ना कि भाई तुम्हें जुकाम कैसे हो गया, कि साहब ठंडी हवा चली, ठंडी हवा के लगने से मुझे जुकाम हो गया। तो ठंडी हवा के लगने से जुकाम हो जाए तो सबको हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो ठंडी हवा अकेली तुम्हें नहीं लगी है, वहां तो हजारों लोग थे और उनको तो जुकाम नहीं हुआ, तुम्हें कैसे हो गया? कि धूल बहुत उड़ रही थी इसलिए मेरे को एलर्जी हो गई। कि धूल अकेले तुम्हारे लिए नहीं उड़ती है, राजस्थान में सारे राजस्थानियों के लिए उड़ती है, उन्हें क्यों नहीं हो जाता है? तो कहते हैं ये बात भी सत्य है कि वो ठंडी हवा लगी इसलिए जुकाम हो गया, और सबको नहीं होता। इसका कारण ये है कि जिसको ठंडी हवा से अथवा धूल से एलर्जी है उसे होता है, उन्हें एलर्जी नहीं है इसलिए उन्हें नहीं हुआ, तुम्हें एलर्जी है इसलिए तुम्हें हुआ। तो अनादि से तुम्हारे मोह राग द्वेष के परिणाम है इसलिए तुम्हें नवीन कर्म का बंध होता है। और इसको सरल किया पंडित जी ने, वो क्या कहते, सुनो, किसी मां बहन को देखने से काम का विकार होता है तो मुझको ही क्यों होता है, साधु संतों को क्यों नहीं होता है और महापुरुषों को क्यों नहीं होता है? ये बात भी सत्य है कि मां के देखने से, बहन के देखने से विकार होता है, महिलाओं को देखने से, लेकिन जिसके अंदर पहले से विकार मौजूद है उसे होता है, और जिसके अंदर में मन में विकार नहीं है उसे नहीं होता। इसे दो बातें सिद्ध हुई कि अनादि से आत्मा कर्म से और राग द्वेष से युक्त है, इसलिए नया राग द्वेष होता है और इसलिए नया कर्म बंध होता है। कर्म बंध की प्रक्रिया में तो उन्होंने चार प्रकार का जो बंध होता है वो बताया कि स्थिति और अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश, ये चार प्रकार का बंध होता है। और प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि पंडित जी ने खुद लिखा है कि कषाय का मतलब क्या, आज का ये करेंट टॉपिक है ना, पेज नंबर 27 निकालिए आप, के स्थिति और अनुभाग बंद तो कषाय से होता है, मिथ्यात्व से तो बंद होता नहीं है, ये बात जो चलती है ना। तो देखो इसके नीचे से देखिए छठवीं सातवीं लाइन जो हेडिंग है ना, कषाय से स्थिति अनुभाग बंद लिखा क्या नहीं लिखा हेडिंग इसके नीचे, तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यता कषाय है। कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा, ये कसाय माने क्या? पन्नालाजी साहब, अकेले क्रोधमान माया लोग कसाय नहीं, लिखा नहीं मिथ्यात्व और क्रोधमान माया लोग और जितने भी मोह कर्म के उदय से भाव होते हैं, चाहे दर्शन मोह के उदय से हो चाहे चरित्र मोह के उदय से हो, सबका एक नाम कसाय है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मोक्षु भाइयों ने हजारों बार पढ़ा होगा और एक करेंट टॉपिक भी हमारे सामने इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है कि मिथ्यात्व से बंध नहीं होता है, लेकिन इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। क्या कह रहे साहब? गोमर साहब ने तो लिखा है कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है, कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। उस जमाने में, टोडोमल जी के जमाने में तो कोई शायद ऐसा कहने वाला नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन उनका ध्यान गया और उन्होंने उसे परिभाषित किया कि जब हम ये कहते हैं कि कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है तो उसका अर्थ अकेला कसाय नहीं होता है, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद और कसाय ये अर्थ होता है। इसमें अवृत्ति और प्रमाद तो लिखा ही नहीं है। तो भाई साहब, प्रमाद के जो 15 ढंग होते हैं, भेद होते हैं, उनमें 4 कसाएं शामिल हैं, इसलिए वो समझाने की जरूरत ही नहीं है। और अवृत्ति जो है वो तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से ही होती है, इसलिए वहां लिखने की जरूरत नहीं थी। मिथ्यात्व के साथ में चक्कर था, इसलिए उन्होंने लिख दिया मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम जो मोह कर्म के उदय से, मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय, उन सबका माने 28 ही प्रकार के जो भेद हैं, उन सबका नाम कसाय है। अब हम करते क्या है देखिए, कि इसको तो ध्यान नहीं देते हैं और आगे का पेज पे निकाल के देखें जहां लिखा है कि जिन्हें बंद नहीं करना है वे कसाय नहीं करें। देखो पेज नंबर 28 पर ये नीचे है ना, ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथायोग प्रकृति परिणाम, इसके ऊपर की पंक्ति देखो, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें। ये दिखाते हैं कि देखो देखो देखो, टोडोमल जी साहब भी लिखते हैं कसाय नहीं करेंगे, कसाय से बंद होता है, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि कसाय शब्द का अर्थ क्या, मैं जब यहां कसाय बोलूं तो उसमें मिथ्यात्वादी सब भाव लेना, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और कसाय शब्द का अर्थ जो हमने अपने मन से समझ रखा है वह उसे ही समझ कर और अपनी व्याख्या करते चले जाते हैं। कितना स्पष्ट लिखा, तो इन्होंने बताया कि प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद, संक्षेप में इस पर प्रकाश डाला। प्रदेश बंद क्या है कि आत्मा के मोह राग देश भावों के निमित्त से जो कारमान वर्णाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं, तो जितने भी पुद्गल के वे परमाणु आत्मा के प्रदेशों के साथ एकमेक होते हैं, उन परमाणुओं का आत्मा के साथ एकमेक होना उसका नाम है प्रदेश बंद। जितने परमाणु आए, समझे 1,00,000 परमाणु आए, जितने भी आए, शास्त्र में की भाषा में उसे समय प्रबद्ध बोलते हैं, एक समय में बंधने वाले कर्म के परमाणु का एक नाम क्या है, समय प्रबद्ध। तो उनमें जो बंटवारा होता है, ये कर्म ज्ञानावरणी रूप परिणमित होंगे, ये दशनावरणी रूप होंगे, ये आयु गोत्रंतराय रूप होंगे, मोहिनी रूप होंगे, तो वो बंटवारा जाकर के उन रूप में हो जाना प्रकृति माने स्वभाव, कि इसकी ज्ञानावरणी ज्ञान को आवरण करने की प्रकृति है, इसको दर्शन को आवरण करने की प्रकृति है, इसको क्रोध पैदा करने की प्रकृति है, प्रकृति माने स्वभाव। तो उसका वो बंटवारा तक हो जाने का काम ये योग माने मन वचन काय की चंचलता, अथवा मन वचन काय की चंचलता के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद हलना डुलना होता है उसका नाम है योग। तो इतना काम तो योग से होता है। तो योग तो आपको जानते हैं अनंत भगवान के लिए, जब प्रकृति और प्रदेश बंद योग से होता है और स्तुति अनुवाद में कैसा ऐसे होता है, तो ऐसा लिखना चाहिए था ना कि वे योग को भी ठीक करें और कसाय नहीं करें। लेकिन पंडित गोविंद जी ने तो लगा जिन्हें बंद नहीं करना है वे कसाय नहीं करें, मैंने प्रकृति और प्रदेश बंद होने दें। शिष्य कहता है उल्टा भी हो सकता था, जब प्रकृति और प्रदेश बंद होंगे ही नहीं तो स्थिति काय में पड़ेगी, अनुभव काय में पड़ेगा। जनवा कहते वहीं से रोक देना मामला, कि जो काम अरहंत भगवान नहीं कर पाए वो तू करेगा, ये तो संयोग केवली है ना, योग है ना उनके, और उनके प्रकृतियां आती हैं, प्रदेश कर्म के आते हैं, और प्रकृति भी पड़ती है, अनुभाग नहीं पड़ता, स्थिति नहीं पड़ती, इसलिए एक समय बाद फिर के चले जाते हैं। इसलिए उनसे अपन को कोई खतरा नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण बात पर पंडित जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि सबसे पहले मिथ्यात्व और कसायों को छोड़ें। मैंने सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अवृत्ति, फिर प्रमाद, फिर कसाय, और फिर योग का नंबर आता है। और हम धर्म करने वाले लोग आजकल उल्टा शुरू करते हैं, योग से शुरू करते हैं, योगा की क्लासें चलती हैं, चलो भाई योगा में, योगा में, योगा में, क्यों पीड़ की हड्डी सीधी करके नाक को देखना शुरू करके, जो केवली भगवान ने नहीं किया है? वो काम हम सुन पहले से साथ अपने शरीर को कंट्रोल में करना चाहिए। अरे शरीर तो तेरे से जुदा तत्व है, वो अजीव है और तू जीव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा महासिद्धांत है। और तू शरीर को कब काबू में करना, यहां से धर्म शुरू करता है, ये तो मिथ्या मान्यता है। आत्मा का धर्म करने के लिए आत्मा से आरंभ होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, कसाय कम करें, पहले योग ठीक करें, फिर गुस्सा नहीं करें। वे कहते हैं पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर अवृत्ति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगी, फिर कसाय पूरे रूप से जाएगी, फिर योग, और हम फिर बस करते हैं, और उसके नीचे बातें ही नहीं करते हैं, बस खत्म। कसाय कम करें और फिर बहुत से बहुत कुछ वृत्त ले लो, प्रमाद नहीं करो, आलस नहीं करो, लेकिन मिथ्यात्व की तो कोई बात ही नहीं करता, करेगा भी क्यों, क्योंकि वो बंद का कारण ही नहीं है। जब उसे हम मानते हैं वो बंद का कारण नहीं है ऐसा मानते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत क्या है? तो पंडित जी यहां पर कहते हैं मिथ्यात्व और कसाय, तो अब वो जो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, उन प्रकृति जो कर्म की बंधी है वो कितने काल तक आत्मा में रहेगी, इसका निर्धारण कसाय के अनुसार होता है। कसाय माने वही मिथ्यात्व से लेकर अवृद्धि, प्रमाद और कसाय। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैं कसाय शब्द बोलूं तो आप चारों समझ लेना। क्या तो इनसे वो कितने काल रहेगी वो इसके अनुसार होता है, और उसका डिटेल हमारे करुणानियोग के ग्रंथ में है। पंडित जी ने बताया है कि शुभ भाव शुभ कसाय हो, शुभ भाव रूप कसाय हो तो पुण्य प्रकृतियों में स्थिति लंबी पड़ती है, अशुभ भाव रूप हो तो पाप प्रकृतियों में लंबी पड़ती है। वो डिटेल है, इसमें भी थोड़ा बताया है और आगम में बहुत बताया है, लेकिन सिर्फ अपन को तो अभी इतना समझना है कि वो उस कितने काल तक रहेंगे इसका निर्धारण मिथ्यात्व और कसाय से होता है। इसका नाम है स्थिति बंद। अब वो रस कैसे देगा, उसका फल कैसे आएगा, तो उसे बोलते हैं अनुभाग बंद। तो वो भी इस कसाय के अनुसार माने मिथ्यात्व कसाय के अनुसार बनता है। प्रकृतियां माने प्रदेश कम हो और फल ज्यादा मिले, प्रदेश ज्यादा हो और फल कम आए, ऐसा हो सकता है। इसके लिए पंडित जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कोई मादक पदार्थ है और उसमें परमाणु कम है लेकिन नशा ज्यादा चढ़ता है, और एक में एक गिलास शराब पी जाए नशा ही नहीं आवे, और एक में जरा सा एक तोला पिए तो पागल हो जाए, उसमें मादक शक्ति ज्यादा है। तो वो कहते सड़ाते साथ जितने ज्यादा काल तक रहता है उसमें उतनी अधिक मादक शक्ति पैदा होती जाती है। ऐसे ही इस कर्म में भी ऐसा है, और उसका थोड़ा प्रकाश इस पर भी डाला गया है कि वो उदय में कैसे आते हैं। ये तो बंधने की बात हुई कि प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, बंधने की बात हुई ना। अब वे कर्म सत्ता में रहते हैं, इसमें भी प्रकाश डाला। ये सब बीमारी का निदान चल रहा है पंडित टोडरमल जी के शब्दों में। दूसरे अध्याय की चर्चा चल रही है, दूसरे अध्याय का सार चल रहा है। क्या जब वो कर्म बंधा और जब वो उदय में आएगा, तो उन दोनों के बीच में जो कर्म आत्मा के साथ में रहेगा उसका नाम है सत्ता। तो उसका भी कुछ नियम है, कुछ आबाधा काल कहलाता है। आबाधा काल, आबाधा काल का मतलब यह है कि कर्म जो अभी बंधा है वो कब तक बाधा नहीं देगा। बंधा हुआ कर्म बाधा नहीं देता है, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म बाधा नहीं देता है। जब उदय में आता है तो उसका फल आता है। तो आबाधा काल माने उदय में नहीं आना। उसको उदाहरण से ऐसा समझ सकते हैं हम कि हमने कर्जा लिया किसी साहूकार से, गवर्नमेंट से, तो वो कहता है 3 साल तक तो आप पे कोई तगादा नहीं करेगा, आपको चुकाना नहीं है 3 साल तक। 3 साल बाद फिर इकट्ठा नहीं चुकाना है, फिर किस्तें बन जाएंगी और आपको हर महीने इतना देना पड़ेगा, अथवा ऐसा कि पहले महीने में आपको 500 रुपये महीना 1 साल तक देना पड़ेगा, फिर दूसरी साल 400 रुपये महीना, फिर तीसरी साल 300 रुपये महीना, ऐसी किस्तें बन जाएगी, लेकिन वो 3 साल तक 1 पैसा नहीं देना। तो ऐसे ही कर्म में होता है आबाधा काल, मैंने जब तक वो कर्म का उदय बिल्कुल नहीं आएगा उसका नाम आबाधा काल, वो सत्ता में पड़ा है। जब उदय में आना शुरू होता है तो ऐसा नहीं कि खट्टा आ गया, वो एक समय में बंधा हुआ कर्म अनेक समयों में बंध करके उदय में आता है, किस्तों में उदय में आता है। और वो ऐसा ही ऐसी होती है किस्त कि सबसे पहले सबसे अधिक प्रदेश उदय में आते हैं, फिर तो बाद में धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जिसमें बोला पहले साल 400 रुपये महीने, अगले साल 300 रुपये महीने, लेकिन अनुभाग में उल्टा होता है। जब वे ज्यादा प्रदेश आए तो कम फल देते हैं, जब कम प्रदेश उदय में आते हैं बाद में तो वे ज्यादा फल देते हैं। ये डिटेल सब करुणा योग के शास्त्रों में है, पंडित टोडरमल जी ने थोड़ा प्रकाश डालकर और ऐसा लिखा यहां कि ये सब बातें हम आगे जब कर्म अधिकार लिखेंगे तो उस कर्माधिकार में विस्तार से ये सब बातें हम आपको लिख बताएंगे। तो इसमें लिखा है कर्माधिकार, मैंने कर्माधिकार नाम का कोई अधिकार वो इसमें लिखने वाले थे पंडित जी, उनके दिमाग में एक प्लानिंग थी कि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कर्माधिकार नाम से एक अधिकार में पूरा का पूरा लिखूंगा। इसलिए वो लिखते हैं कि इसकी चर्चा हम आगे चलकर कर्माधिकार में विस्तार से करेंगे। यहां नहीं चाहते वो हम विस्तार से उसकी चर्चा करें। जब आज पंडित जी नहीं चाहते हैं तो हम भी नहीं चाहते। पेज नंबर 30 पे है, देखो द्रव्य कर्म व भाव कर्म के स्वरूप व प्रवृत्ति, ये हेडिंग है ना, इसके ऊपर है। तो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। मैंने कल चर्चा की थी ना कि आगे इसमें क्या क्या होता, मैंने जो ये कल्पना करके निकाला है वो टोडरमल जी के इन्हीं वाक्यों में से उसके प्रतिफल के रूप में निकाला है। पूरा जो कर्मकांड उन्होंने पढ़ा था, सम्यक ज्ञान चंद्रिका का जो चीज है वो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सरल भाषा में आने वाली थी। पंडित टोडरमल जी के दिमाग में ये प्लानिंग था, हमारे दुर्भाग्य से वो नहीं आ पाया। कर्म का नहीं आ पाया, धर्म का तो आ गया। जब इस बात पर विचार आता है तो बहुत दुख होता है कि यदि ये पूरा हो गया होता तो कितना अच्छा रहता। फिर जब इस बात का विचार आता है कि जितना लिखा गया है उतना भी हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो पूरा लिखा जाता तो उससे क्या होता। मेरे पुत्र की बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी बात हुई ना, तो ब्रह्मदृष्टि महाभाष हमारा बहुत महान ग्रंथ है, जो आचार्य समंत भद्र ने लिखा था, वो तत्वा सूत्र का महाभाष है। उसके लिए हम रोते हैं और तत्वा सूत्र पढ़ते नहीं है, सर्वा सिद्धि पढ़ते नहीं है, राजवार्तिक पढ़ते नहीं है, श्लोक वार्तिक पढ़ते नहीं है, अर्थ प्रकाश का पढ़ते नहीं है। अरे तो उसी तत्वार सूत्र पर इतने महान ग्रंथ अभी उपलब्ध भी तो है, अकलंक के और पूज्य पाठ के जैसे, और उन्हें पढ़ने में भी तो हमें पसीना निकल जाता है। जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमें उपलब्ध है उसको गहराई से हम अध्ययन कर ले, तो उनको ये कहने का अधिकार है, ये विकल्प करने की जरूरत है कि और आगे होता तो बहुत अच्छा रहता। हमें तो यही इतना बड़ा पोथर ना दिखता है, हाँ 400 पेज, इतना बड़ा ग्रंथ, इतनी बड़ी नहीं, हमें तो कोई छोटी सी किताब दे दो, कह रहे ना। तो पंडित जी ने इस तरह से, हाँ, कर्म कैसे बंधते हैं, कब तक कर्म सत्ता में रहते हैं और किस प्रकार वो उदय में आते हैं, इस पर उन्होंने संक्षेप में प्रकाश डाला। फिर उन्होंने कहा कि ये तो अनादि से कर्म बंध है, बीमारी है, और फिर वो नई नई कैसे पनपती रहती है इसकी बात हुई, कि तुम्हारे खून में जन्म से ही एलर्जी है, और फिर तुम धूल में जाते हो, मिट्टी में जाते हो, धूप में जाते हो, तो तुम्हारे लिए बार बार जुकाम हो जाता है, और फिर बार बार हो जाता है तो नाक में जख्म हो जाते हैं, अंदर फेफड़े में गड़बड़ हो जाती है, अभी और भीग पड़ते हैं तो और गर्म गड़बड़ हो जाती है। ये तो इतनी बात हुई, अनादि से भी बीमारी है ये बात भी सच्ची है, और फिर बाद में भी होता है गड़बड़ ये बात भी सच्ची है। अपन कहते हैं टका में टका और ढका में ढका, गरीबी के साथ गरीबी तो पहले ही से जन्मजात गरीबी है, और उसके बाद में और आफतें आ जाती हैं, बच्चा बीमार हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और तकलीफें खड़ी हो जाती हैं। तो कहते हैं ये तो तेरी बीमारी की वर्तमान की पोजीशन है, कर्म बंध निधान, मतलब बीमारी की पता, अनादि काल की जो बीमारी है। फिर वो ये कहते हैं कि जो कर्म बंध निधान है उसमें कर्म जो 8 प्रकार के हैं, ज्ञानावरण, दशमावरण, वेदनी, आयु नाम, मोह, गोतंत्राय, इन 8 कर्मों से तुझे कैसी कैसी तकलीफें होती हैं उसका उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया, उन तकलीफों का दर्शन भी उन्होंने संक्षेप में किया। ज्ञानावरणी कर्म की वजह से क्या होता है, दशमावरणी कर्म की वजह से क्या होता है, वेदनी के कर्म की वजह से क्या होता है, मोहिनी कर्म की वजह से क्या होता है, यानी बीमारी के जो तेरे को लक्षण प्रकट होते हैं ना, कहते कभी कभी तुम्हें जुकाम हो जाता होगा, कभी कभी सिर दर्द हो जाता होगा, कभी शरीर में चकत्ते पड़ जाते होंगे, कभी सर्दी लगनी लगती होगी, कभी गर्मी लगनी होती होगी लगती होगी, है ना। ऐसे वो पंडित जी बताते हैं कि ये जो तेरे को बीमारी के अंदर में जर्म्स पड़े हैं उनसे तेरे को कैसी कैसी तकलीफें होती होंगी। उसके लिए उन्होंने कहा कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तेरा ज्ञान, दशमावरणी कर्म के उदय से तेरा दर्शन ढक गया है, तू अनंत ज्ञान का धनी है, तेरे में ऐसी ताकत है स्वभाव से कि एक क्षण में आंख खोले बिना सारे लोकालोक को हाथ में रखे हुए आंवले जैसा जान ले, तू क्या चीज है तेरे को पता है। लेकिन इस ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तेरी वो ज्ञान शक्ति इतनी क्षीण हो गई है, इतनी क्षीण हो गई है कि तू जड़ जैसा, पत्थर जैसा हो गया है, और थोड़ा बहुत जो उसका छेवसम के है और उसकी वजह से जो खुला है इंद्रिय ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो उसकी ये हालत हो रही है कि 50 शर्तें, क्या 50 शर्तें हैं, ऐसी ऐसी शर्तें लगी हुई हैं कि तू देख तो सकता है लेकिन आंख चाहिए, उजेला चाहिए, चश्मा चाहिए, तब तू देख सकता है, कि इतनी शर्तें पूरी कर दूंगा तो भी लिमिटेड एरिए का ही देखेगा, तो 200 कोस का तो सवाल ही नहीं है, न ज्यादा पास का देख सकेगा, न ज्यादा दूर का देख सकेगा, और उसमें भी वैसी स्पष्टता नहीं होगी। यानी ये जो तेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है ज्ञानावनी करूं के छोसम से, उसमें इतनी इफ एंड बट लग रहे हैं कि वो नहीं होने के बराबर है। तो इतनी बात समझ लेना कि तेरे स्वभाव का जो अंश है वो जागृत है। इस मामले में उन्होंने बहुत अच्छा एक तर्क दिया है पंडित जी, तो समझने लायक है। वो क्या कहते थे समझना बहुत मार्मिक सब लोग, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से और दशनावरणी कर्म के उदय से जो ज्ञान ढक गया है, जो ज्ञान नहीं है माने वो अज्ञान है, वो दो हो ही ना, और एक जो ज्ञान है वो दो अवस्थाएं हो गई ना। तो ज्ञानावरणी कर्म के छोपसम से जो ज्ञान है वो और जो नहीं है वो, ये दोनों से ही बंध के कारण नहीं है, क्योंकि आगे बीमारी को बढ़ाने वाले नहीं है। ये तेरे को फल आ गया, तूने भोग लिया, अब जो तू नहीं जानता है उससे नया कर्म कोई नहीं बनता है। जब जो मैं वो जानता हूं मति ज्ञान सिद्ध ज्ञान रूप में थोड़ा थोड़ा, तो उससे तो कर्म बनते होंगे कि नहीं, वो तो स्वभाव का अंश है पागल, उस स्वभाव के अंश से कर्म कैसे बन सकते हैं। तो जो ज्ञान प्रगट है मति ज्ञान रूप में उससे भी कर्म का बंध नहीं है, और जो ज्ञान नहीं है उससे भी कर्म का बंध नहीं है। वस्तुतः तो बात ऐसी है कि ज्ञान दर्शन गुण बंध के कारण ही नहीं है, एक मोहिनी कर्म है, ऐसा लिखा है इसमें। आप लोग घर पर जाके शांति से पूरा पढ़ना, मैं एक दिन में एक अध्याय कम से कम पूरा करना है, इसलिए मैं पंक्तियां पंक्तियां पढ़ के आपको नहीं सुना सकता हूं, लेकिन मैंने तो पढ़ा है ना। पंडित की बात समझ के उड़ा मत देना, हिंदी की बात समझ के उड़ा मत देना, क्या तो इसकी बात है क्या, कि वो बंद का कारण नहीं है। बंद का कारण तो मोहिनी कर्म के उदय से जो मिथ्यात्व कसाय भाव है वो ही वास्तव में बंद का कारण है। वो जो योग से जो बंद होता है उसकी तो वे यहां बात ही नहीं करते हैं, वो तो कहते तुम्हें बंद नहीं करना है तो कसाय नहीं करो, क्योंकि वो तो केवली के बाद में भी होता, ऑटोमेटिक प्रक्रिया में होगा, उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं। यानी आठ कर्मों में सात कर्मों के उदय से कोई बंध का संबंध नहीं है। सत्ता में पड़े हुए कर्म तो आठ ही में बंध के कारण नहीं है, बंधते वक्त वाले कर्म आठ ही कर्म बंध के कारण नहीं है, उदय में आने के वाले होते हैं, तो उदय में भी अकेले मोहिनी कर्म के उदय से जो मिथ्यात्व कसाय भाव होता है वो बंध का कारण है और कोई बंध का कारण नहीं है। ये बात उन्होंने अच्छी तरह से इसमें समझाई, बहुत वजन दे के ये बात कही, क्योंकि हमको पता तो पड़ेगा बीमारी का कारण क्या है। कि साहब मेरे को तो जुकाम होता है ना, तो मैं तुम्हें सब पानी ठंडा पानी पीने बंद कर देता हूं, ये कर देता हूं, पागल है, पानी तो खूब पिया करे, वो ठंडा पानी ठंडा पिया करे। अमेरिका वाले तो बर्फ खाते हैं सर्दियों के दिनों में, और जुकाम वाले भी बर्फ खाते हैं, तो पानी से गड़बड़ होती है ना। अरे पानी तो इन्फेक्शन वाले पानी से गड़बड़ होती है, पानी में जो कीटाणु है उससे गड़बड़ होती है, पानी में जो धूल मिट्टी है गड़बड़ी होती है। बढ़िया छना हुआ गर्म करके बॉइल्ड वाटर हो ना, क्या बॉइल्ड वाटर हो मैंने बढ़िया गर्म किया हुआ प्रासव पानी हो तो कितना ही ठंडा हो पी जाते हो, कोई नुकसान नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो नहीं मैं तो नहाना बंद कर देता हूं बुखार में, ये पागल कितनी की बात करता है, क्यों नहाना बंद करता है। ज्यादा बुखार होता है तो बर्फ की पट्टी लगाते हैं मन से, वो बंद कर देता है, और तेरी हालत खराब हो जाती है। ये नहीं है, जिस परहेज को तू पालता है वो परहेज नहीं है, और जिसे पालना चाहिए वो तू पालता नहीं है। क्यों तुम्हें कर्म बंद होता तो मैंने मूंग की दाल बंद कर दी, मूंग की दाल से कैसे कोई सा कर्म का बंद होता है, कैसे बंद कर दी मूंग की दाल, मिथ्या तो बंद नहीं करता मूंग की दाल बंद करता। इस सारे के सारे जो कर्म बंद के अभाव के लिए मुंह मजबूर की दाल बंद करके समझ रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, मित्रत्व जो बंद का कारण है, कसाय जो बंद का कारण है, उस पर विचार नहीं करते। पंडित जी ने इसमें बहुत अच्छा प्रकाश डाला कि बंद का कारण क्या है, तुम समझ तो ले, तुझे परहेज करना है, बात सच्ची है, लेकिन परहेज भी ऐसा ना हो जाए कि वो परहेज बीमारी बन जाए। जब मेरा जो हार्ट का हो गया ना, और जब मैं आने लगा फाइनल यहां अमेरिका से, तो डॉक्टर ने मालूम क्या कहा मेरी मिसेज से, इन पंडित जी को थोड़ा खाने पीने को देना, इतना इतना ज्यादा परहेज मत कराना, थोड़ा सा आनंद लेने देना। ऐसा कुछ क्योंकि मैंने देखा जी इतना परहेज करते, इतना करने की जरूरत नहीं, ऐसा समझाया। बोले हमें सब मरीजों को यह समझाना पड़ता है कि तुम परहेज में गड़बड़ की तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, फिर भी जब आते हैं लौट के हमारे पास तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो परहेज काय का करना, काय का नहीं करना, उसका विवेक तो करना कि नहीं करना, बंद का कारण जो है उसका परहेज करना ना। तो बंद का कारण तो मिथ्या पर है, कसा है, और तूने मान लिया है छोटी छोटी क्रियाएं खाने में पीने में उठने में बैठने में, जो जो जड़ की क्रिया है तेरा से कोई संबंध नहीं है, तो सारा ध्यान उसी पर चला गया है। तो उन्होंने कहा तेरे को मुझे जाना बनी दसना बनी बेदनी, ये बेदनी कर्म के उदय से ये शरीर और शरीर के बाहर के संयोग जिसे हम सुख दुख सामग्री कहते हैं, उनकी प्राप्ति होती है, ख्याल में है ना। अब उनमें जो सुख दुख के कारण कब बनते हैं, कहते तो है सुख दुख सामग्री, उसे नाम तो उसका सुख दुख सामग्री, ये सुख दुख के कारण नहीं है। वो मोह का उदय हो तो वे कारण बनते हैं, और मोह का उदय नहीं हो तो वे कारण नहीं बनते। आयु कर्म में तो ये काम है कि कितने काल तक तुम इस देह में रहोगे, इसलिए वो बंद का कारण है नहीं। नाम कर्म से गोरा भूरा शरीर मिल गया, काला कलूटा मिला, तो ऐसा थोड़ी कि काला कलूटा शरीर है तो ज्यादा कर्म बनेंगे, और गोरा भूरा शरीर है तो कम कर्म बनेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, तू काला कलूटे शरीर से होने से दुखी होएगा, और गोरा भूरा होने से अभिमान में चढ़ जाएगा, कसाय करेगा उसमें एकत्र बुद्धि करेगा तो जरूर बंद होगा। गोत्र ऊंच गोत्र नीच गोत्र होता है, इस तरह आठों कर्मों के फल में इस किस तरह की तकलीफें होंगी, उन तकलीफों के परिणाम में उसे किस प्रकार का कर्म बंद होगा, एक कर्म बंद निदान और उसकी प्रक्रिया को उन्होंने समझाया। अच्छी तरह बीमारी समझ जाए मरीज एक बार, तो फिर उसे उसका इलाज बताने की बात आगे आरंभ करेंगे। इस तरह दूसरे अध्याय का सारांश हुआ, जिसमें पंडित टोडा मजी ने यह बात बताई।
शांति सुधावर साए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, पूरा पर सब दोष रहित पाप क्रिया से शून्य शोध, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधावर साए दिन वाणी, परमागम भाग्यों को अर्पण, मुक्ति बधु के मुख का दर्पण, भव सागर से ताए दिन वाणी, शांति सुधावर साए दिन वाणी, राज रूप अंगारों द्वारा महादेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधावर साए दिन वाणी, सत तत् का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुधावर साए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी।